पृष्ठ संख्या 150, एकादश अध्याय का शेष। बर्कले ने आत्म तत्व का प्रतिपादन किस प्रकार किया, यह भी जान लेना चाहिए। हमारे ज्ञान के विषय केवल विज्ञान ही हैं, फिर हम आत्मा का ज्ञान कैसे करते हैं? आत्मा तो ज्ञाता है, विज्ञान उसके गेय हैं। इस ज्ञाता का ज्ञान कैसे होता है? बर्कले का उत्तर है कि अपनी आत्मा का ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वानुभूति से प्रत्यक्ष हो रहा है। इसके विषय में किसी को कोई शंका नहीं। पृष्ठ संख्या 151। विज्ञान ज्ञान के विषय हैं, अतः इनका ज्ञाता अवश्य होना चाहिए। वह ज्ञाता आत्मा ही है जो विज्ञानों से पृथक है और जो विज्ञानों का अधिष्ठान है। आत्मा का कार्य ईश्वर सृष्ट संवेदनों को ग्रहण करना और स्वसंवेदनों का निर्माण करना है। लॉक ने आत्मा को निष्क्रिय बताकर बड़ी भूल की है। आत्मा का अस्तित्व उसकी सक्रियता में है, उसकी चिंतन शक्ति में है। अन्य जीवात्माओं का ज्ञान हमें विज्ञानों से नहीं होता, क्योंकि विज्ञान या तो इंद्रिय संवेदन रूप है या उनके स्वसंवेदन रूप, और इनकी पहुंच आत्मा तक नहीं होती, क्योंकि आत्मा इंद्रिय अनुभव का विषय नहीं है। अन्य आत्माओं का हमें अंतर्बोध या नोशन होता है, विज्ञान या आइडिया नहीं। आत्मा की विशेषता उसकी क्रियाशीलता में है। वह चिंतन शक्ति से अपना प्रभाव उत्पन्न करती है। अन्य जीवों को चिंतन शक्ति के कार्यों को देखकर हम उनके अस्तित्व का अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि हम यह जान सकते हैं कि जो कार्य हम अपनी चिंतन शक्ति से कर सकते हैं वे ही कार्य ये लोग भी कर रहे हैं। अतः ये भी आत्मरूप है। यह अनुमान अंतर्बोध को पुष्ट करता है। अंतर्बोध और विज्ञान में बर्कले ने चार भेद बताए हैं। पहला, विज्ञान इंद्रिय अनुभव से होता है, अंतर्बोध प्रज्ञा से। दूसरा, विज्ञानों का ज्ञान विशेषों का ज्ञान है, अंतर्बोध सामान्य और सार्वभौम ज्ञान है। तीसरा, विज्ञान पशुओं को भी होता है, अंतर्बोध केवल मानवों को और ईश्वर को। चौथा, जहाँ विज्ञान की गति नहीं होती वहाँ अंतर्बोध होता है। अंतर्बोध विज्ञान नहीं है और न वह सामान्य होने के कारण अमूर्त विज्ञान हो सकता है। अमूर्त विज्ञान एक असंगत कल्पना है। अंतर्बोध का स्वसंवेदन रूप विज्ञान से सादृश्य तो है, किंतु महत्वपूर्ण भेद यह है कि स्वसंवेदन इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि अंतःकरण से होता है और अंतर्बोध प्रज्ञा से होता है, इंद्रियों से नहीं। अंतर्बोध बुद्ध विकल्पों से भी भिन्न है, क्योंकि अंतर्बोध अतींद्रिय और साक्षात होता है, जबकि बुद्धि विकल्प इंद्रिय संवेदनों से संबद्ध रहते हैं और सविकल्प होते हैं। अतः अंतर्बोध इंद्रिय अनुभव और सविकल्प बुद्धि दोनों से भिन्न है। अंतर्बोध से हमें अन्य आत्माओं का, अपनी मानसिक क्रियाओं का और संबंधों का ज्ञान होता है। अंतर्बोध का विषय विज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, विज्ञान अंतर्बोध के विषय या आत्मा का विषय होता है। पृष्ठ संख्या 152। परमात्मा होने के कारण ईश्वर का भी हमें अंतर्बोध होता है। अन्य आत्माएं जीवात्माएं हैं। ईश्वर अनंत है और परम आत्मा है। ईश्वर के विषय में बर्कले की अनुमान प्रक्रिया इस प्रकार है। मेरी आत्मा में विज्ञानों का अनवच्छिन्न प्रवाह चलता रहता है, जिसकी मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। इन विज्ञानों का कोई कारण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य अकारण नहीं होता। इन विज्ञानों के चार संभावित कारण हो सकते हैं। पहला विज्ञान, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा जीवात्मा या चौथा परमात्मा। विज्ञान स्वयं निष्क्रिय और विषय रूप है, अतः एक विज्ञान दूसरे विज्ञान का कारण नहीं हो सकता। जड़ तत्व की कोई सत्ता नहीं है, यह सिद्ध किया जा चुका है। जीवात्मा भी जगत विज्ञान का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि जीवात्मा इन इंद्रिय संवेदन रूप विज्ञानों को केवल ग्रहण करती है, इन्हें उत्पन्न नहीं कर सकती। ये विज्ञान जीवात्मा की इच्छा या संकल्प पर निर्भर नहीं होते। यदि मेरी इंद्रियां ठीक कार्य करती हैं और मेज मेरे सामने है, तो मुझे मेज विज्ञान का ग्रहण करना ही पड़ेगा। पुनश्च ये विज्ञान किसी विशेष आत्मा में ही उत्पन्न नहीं होते, किंतु सभी आत्माओं में जो समान दशा में हो लगभग समान रूप में उत्पन्न होते हैं। और इन जगत विज्ञानों में एक तंत्रता और निश्चित क्रम है, अतः इनको जीव सृष्ट न मानकर ईश्वर सृष्ट ही मानना पड़ता है। अतः ईश्वर की सत्ता में हमें अनिवार्य रूप से विश्वास करना पड़ता है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, यह युक्त और अंतर्बोध का विश्वास है। ईश्वर की सत्ता इसी विश्वास पर निर्भर है या इससे इष्ट क्रेडी। बर्कले के अनुसार आत्मा का स्वरूप चित्त शक्ति है, जिसमें बोध और संकल्प दोनों का समावेश है। हमारी आत्मा का ज्ञान हमें अपनी चित्त शक्ति से प्रत्यक्ष हो रहा है। अन्य आत्माओं का ज्ञान हमें अंतर्बोध से होता है और यह अंतर्बोध अनुमान से पुष्ट किया जाता है। अन्य आत्माओं का ज्ञान हम उनकी चित्त शक्ति के कार्यों से करते हैं। अन्य जीवात्माओं का अनुमान हम उनकी चित्त शक्ति के कार्यों से करते हैं। जो कार्य हमारी चित्त शक्ति के कार्यों के समान होते हैं, ईश्वर का अनुमान हम उनकी चित्त शक्ति के कार्यों से अर्थात जगत विज्ञानों से करते हैं, जिनमें सार्वभौमता, निश्चित क्रम और एक तंत्रता होती है, और जो संवेदन रूप से हमारी आत्माओं में प्रविष्ट होते हैं। जीव संवेदन ग्रहण करने में निष्क्रिय और स्वसंवेदन उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं। ईश्वर में अटल विश्वास रखने और जगत विज्ञानों को ईश्वर सृष्ट या जीव सृष्ट नहीं मानने के कारण बर्कले दृष्ट सृष्टिवाद या सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। पृष्ठ संख्या 153 मानसवाद, मेंटालिज्म और अहमवाद, सॉलिप्सिज्म के दोषों से सर्वथा बच जाते हैं। जगत विज्ञान जो स्वयं निष्क्रिय और विषय रूप है, ईश्वर सृष्ट होने के कारण सत्य है। अतः बर्कले के दर्शन में जगत न तो हमारी मनोमय कल्पना है और न असत है। उनके दर्शन को न समझने के कारण प्रायः ये निर्मूल आक्षेप उन पर किए जाते हैं। विज्ञान शब्द से उनका तात्पर्य है अनुभव का विषय, और चूंकि जगत हमारी अनुभूति का विषय है इसलिए वह विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ उनके दर्शन में कोरी मानसिक कल्पना नहीं है। कोई विज्ञान काल्पनिक या एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। प्रत्येक विज्ञान एक विशेष पदार्थ या पार्टिकुलर थिंग्स और अनुभव विषय या कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। विज्ञान दो प्रकार के हैं, संवेदन रूप और स्वसंवेदन रूप। संवेदन रूप विज्ञान ईश्वर सृष्ट है, ये ही तथाकथित ब्रह्म जगत है। स्वसंवेदन रूप विज्ञान इनके आधार पर जीवात्मा की सृष्टि है। अनुभविता आत्मा और अनुभूत विज्ञान अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय इन दो के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। ये दोनों अनुभव के ही दो रूप हैं। अतः सत्ता अनुभव मूलक है, जिसे हम जगत कहते हैं। वह हमारा संवेदन पुंज मात्र है। अतः अनुभव बाह्य नहीं है। इस जगत की सृष्टि आत्मा या परमात्मा द्वारा होती है, और इसका ज्ञान भी आत्मा या परमात्मा और जीवात्मा द्वारा ही होती है। अतः जगत अपनी उत्पत्ति और ज्ञान दोनों के लिए आत्मसापेक्ष है। क्या लकड़ी, पत्थर, अग्नि, जल आदि विविध दृश्य पदार्थों का यह समस्त जगत हमारी आत्मा में स्थित है? और क्या हम अपने विज्ञानों को ही खाते, पीते, पहनते, ओढ़ते, बिछाते हैं? आदि सस्ते और बाजारू आक्षेपों का उत्तर देते हुए बर्कले कहते हैं कि इस दृश्य जगत को विज्ञान रूप कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि यह हमारा संवेदन पुंज मात्र है और अनुभव बाह्य नहीं। इसकी सत्ता हमारी अनुभूति का विषय बनने में है। अनुभविता के बिना इसका अस्तित्व नहीं हो सकता। यह आत्म सापेक्ष है। जब मैं कहता हूँ कि जगत पदार्थ मेरी आत्मा में स्थित है या मेरी इंद्रियों पर अंकित है, तो मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि ये आत्मा में उस रूप में स्थित या अंकित है जिस रूप में तथाकथित भौतिक पदार्थ आकाश में स्थित रहते हैं या जिस रूप में मोहर चपड़ी पर अंकित होती है। मेरा अभिप्राय इतना ही है कि ये आत्मा द्वारा ज्ञात या अनुभूत होते हैं। मैं वस्तुओं को विज्ञानों में परिणत नहीं करता, मैं तो विज्ञानों को वस्तुओं में परिणत कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 154। आगे चलकर बर्कले यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस इंद्रिय संवेदन पुंज रूप जगत की सृष्टि में स्वयं नहीं करता, मैं तो इसे ग्रहण मात्र करता हूँ। इसकी सृष्टि परमात्मा द्वारा होती है। एक समस्या और रह जाती है, क्या यह विज्ञान रूप जगत नित्य है अथवा परिवर्तनशील? क्या इसकी सत्ता वास्तविक है अथवा व्यवहारिक? बर्कले को परमार्थ और व्यवहार का भेद मान्य है। उन पर प्लेटो का बड़ा प्रभाव पड़ा है। उनका उत्तर है कि ईश्वर के विज्ञान रूप में यह जगत नित्य सत्य और शाश्वत है, किंतु हमारे विज्ञान रूप में यह अनित्य और क्षणिक है। हमारा इस जगत का ज्ञान इंद्रियानुभव मात्र है, परसेप्शन, अतः क्षणिक और क्षीण है। ईश्वर का ज्ञान सदा दिव्य अंतर्बोध या कॉन्सेप्शन आर नोशन रूप होता है, अतः वह नित्य और सत्य है। ईश्वर के विज्ञान नित्य और मौलिक बिंब या इटर्नल आर्चेटाइप हैं। हमारे विज्ञान अनित्य और गौड़ प्रतिबिंब या टेम्पोरल इकोटाइप्स हैं। बिंब विज्ञानों का ज्ञान ईश्वर को होता है, हमें नहीं हो सकता। प्रतिबिंब विज्ञान ईश्वर द्वारा सृष्ट होते हैं, किंतु इनका ज्ञान हमें होता है। ईश्वर को प्रतिबिंब विज्ञानों के ज्ञान की अपेक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें सदा ही इनके मूल बिंबों का ज्ञान होता रहता है। जगत की पारमार्थिक सत्ता ईश्वर द्वारा अनुभूत होने में है या ऐसे इष्ट कॉन्सिपी हमारी अनुभूति का विषय बनने में जगत की केवल व्यवहारिक सत्ता है या ऐसे इष्ट परसिपी। विधि का यह विचित्र विधान है कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में प्लेटो के इस मानस पुत्र को या स्पिरिचुअल चाइल्ड ऑफ प्लेटो इंद्रिय अनुभववादी लॉक और ह्यूम के बीच की श्रृंखला मात्र माना जाता है और एक ओर इन्हें दो प्रहित लॉक या लॉक पर्ग और दूसरी ओर अपूर्ण ह्यूम या इनकम्प्लीट ह्यूम कहा जाता है। इस कथन में आंशिक सत्य तो है किंतु इसी को पूर्ण सत्य मान लेना बर्कले के साथ घोर अन्याय करना है। यह सत्य है कि बर्कले लॉक के दोषों की आलोचना से अपना दर्शन प्रारंभ करते हैं। यह भी सत्य है कि व्यवहारिक पक्ष में उनको लॉक के इंद्रिय अनुभववाद के कुछ मौलिक सिद्धांत मान्य हैं। यह भी सत्य है कि ह्यूम ने उनकी युक्तियों से जिनके द्वारा बर्कले ने लॉक के जड़ तत्व का खंडन किया, बर्कले के आत्म तत्व का खंडन करने का प्रयास किया है, किंतु बर्कले को विशुद्ध इंद्रिय अनुभववादी मानना उतना ही असत्य है जितना अशोभनीय। पृष्ठ संख्या 155। मानव विज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव में है किंतु यह असली ज्ञान नहीं, यह व्यवहारिक प्रतीति मात्र है। विशुद्ध ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो इंद्रिय अनुभव न होकर निर्विकल्प अंतर्बोध रूप है। बर्कले को जगत की व्यवहारिक सत्यता उसकी ईश्वर द्वारा सृष्टि उसका अनुभव बाह्य न होना उसका आत्मा की प्रतीति का विषय बनना आदि सर्वथा मान्य है। बर्कले को जड़वाद संदेहवाद और अनिश्वरवाद के कट्टर शत्रु और ईश्वरी विज्ञान के उपासक बर्कले को दृष्ट सृष्टिवादी क्षणिक विज्ञानवादी मानसवादी और अहमवादी मानना न केवल बर्कले का अपमान करना है किंतु साथ ही अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना भी है। जड़वाद के खंडन में बर्कले के तर्क अकाट्य हैं। बर्कले के दर्शन में दोष भी है, उनका दर्शन एकांगी रह गया है। इंद्रिय अनुभव और अंतर्बोध अनुभव का सामंजस्य वे पूर्ण रूप से नहीं कर पाए हैं। विविध जीवात्माओं के अनुभव का जीवात्मा और जगत का, जीवात्मा और परमात्मा का, परमात्मा और जगत का समन्वय उनके दर्शन में नहीं हो सका है। बर्कले प्रबल अध्यात्मवादी हैं और साथ ही इंद्रिय अनुभववाद को भी पकड़े हैं जो उनके अध्यात्मवाद में संगत नहीं रखता। उन्होंने अंतर्बोध को अधिक स्पष्ट नहीं किया। यह स्वानुभूति और बुद्ध विकल्प के बीच त्रिशंकु के समान लटक रहा है। बर्कले के अनुसार अन्य आत्माओं की सत्ता अंतर्बोध से सिद्ध होती है किंतु इसे अनुमान से पुष्ट करना पड़ता है। बर्कले का विज्ञानवाद या प्रत्ययवाद जीवात्मा निष्ठ न होकर परमात्मा निष्ठ है, तथापि यह कांट के पारमार्थिक विज्ञानवाद और हेगल के निरपेक्ष विज्ञानवाद से भिन्न है। 11 अध्याय समाप्त।